हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अकरम और रिया की हल्दी का शानदार आगाज हो चुका था। वहाँ रहने वाली लोगों ने उनके फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सभी काफी इंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन उन सब में एक महल जैसा घर रह गया था जहाँ हल्दी का बुलावा नहीं गया था। वो घर किसी और का नहीं बल्कि अभी राठौड़ का था, और उस घर में हल्दी का बुलावा देने के लिए जोया खुद जाने लगी थी। उसने अकरम को बता दिया था कि वो अभी उस घर में बुलावा देकर आती है। वहीं दूसरी तरफ अभी राठौड़ जोया के न मिलने से बेहद गम में था। ऐसा पहली बार हुआ था कि अभी राठौड़ को कुछ चाहिए था लेकिन वो उसकी पकड़ से दूर था। अभी राठौड़ की जिंदगी में आज तक कोई लड़की नहीं आई थी। सबको तो उसके सामने नजरें और गर्दन झुकाने के ऑर्डर थे, और जो कोई वो ऑर्डर नहीं मानते थे तो वो उस इंसान की जिंदगी का आखिरी दिन होता था। लेकिन पहली बार अबीर को कोई ऐसा मिला था जो उससे नजरें मिलाकर बात करने के साथ साथ उस पर हाथ उठाने की भी हिम्मत रखता था। और जब अबीर ने उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के बारे में सोचा तो वो उसकी पकड़ से दूर जा चुका था। जोया की उस महल जैसे घर में अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने जॉन को अपने साथ चलने को कहा, और जॉन खुशी खुशी तैयार भी हो गया। जोया ने उसे ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है, सो जोया जॉन को लेकर उस महलनुमा घर की ओर चल दी थी। और जैसे जैसे वो उस घर के करीब जा रही थी वैसे वैसे जॉन के माथे की सलवटें बढ़ती जा रही थी। सो जब फाइनली जोया अबीर के घर के ठीक सामने पहुंच गई तो उसने अपने पीछे देखा तो चौंक गई। जॉन उस घर को देखते हुए बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी टांगों ने आगे चलने से मना कर दिया था। जोया को लगा जॉन को अचानक किसी चीज का दौरा पड़ा है। वो भागकर उसके पास गई और बोली, जॉन क्या हुआ तुम्हें अचानक? उसकी हालत देखकर जोया की जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी। तब जॉन कहने लगा, जोया मैम आप कहाँ जा रही हैं? तब जोया ने सिंपरी बोला, मैं इस घर में जा रही हूँ, केवल यही एक घर रह गया है जिनके हमने इनवाइट नहीं किया, सो बस इनको इनवाइट करने ही आई हूँ। तब जॉन, मैडम आप यहाँ मत जाइए, मेरी बात मानिए, इस घर में इंसान नहीं बल्कि यमराज रहते हैं जो एक पल में किसी की भी जान बड़ी आसानी से ले लेते हैं। बहुत ही खतरनाक लोग हैं यहाँ, आप प्लीज चलिए यहाँ से, यहाँ हमारा ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। अगर उस यमराज ने देख लिया तो पक्का वो आज का ही स्वर्ग का टिकट कटा देगा, आप चलो यहाँ से। उसने जोया को लगभग खींचते हुए कहा और वहाँ से भाग जाने को बोला। लेकिन जोया की नज़र गेट के उस पार बने महल पर जाकर अटक रही थी। वो उसको देखने के इतना करीब आकर वापस नहीं जाना चाहती थी। चूंकि जोया की हवेली भी किसी महल से कम नहीं थी कि एक ये भी रीज़न था कि उसे देखने की चाह उसे वहाँ तक खींच लाई थी। जब से जोया का गांव उससे छूटा था उसके बाद तो वो वहां कभी नहीं जा पाई थी। क्योंकि इस मैंशन की आकृति कुछ कुछ उसकी हवेली की जैसी थी तो बेचैन हो उठी थी उसे अंदर से देखने के लिए। लेकिन फिर वो एक बार को जॉन की बात सोचने के लिए तैयार हो गई थी। जॉन ने कहा था, मैडम इस घर में एक ऐसा इंसान रहते हैं जो किसी की भी जान यूं चुटकियों में ले लेते हैं, आप मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से, यहाँ शेर दिली दिखाने का कोई फायदा नहीं है। जॉन ने कहा, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जॉन ने घबराहट से कहा, जोया जॉन मैं अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरती हूँ, समझे तुम, और वो अगर शैतान भी है तो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। मैं एक बार ज़रूर वहाँ जाऊँगी, और तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मेरा इरादा और मजबूत हो गया है। अगर तुम्हारे अंदर मेरे साथ आने की हिम्मत नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और यकीन मानो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। जॉन आई एम सॉरी मैम, मेरे अंदर आपके जितना हौसला और ताकत नहीं है, आप चली जाएं और हल्दी का बुलावा दे आएं, मैं आपका बाहर ही खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। जोया ने हल्का सा उसकी ओर मुस्कुराकर ओके कहा और धीरे धीरे अभी राठौड़ के मैंशन के बड़े से दरवाजे के पास पहुँच गईं। जोया ने एक हाथ से अपना लहंगा उठा रखा था ताकि चलते वक्त उसका लहंगा उसके पैरों में न आए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची वहां जाते ही वो हैरान भी हो गईं, क्योंकि पूरा गेट खुला पड़ा था, एक चौकीदार तक दरवाजे पर नहीं था। लेकिन जोया ये नहीं जानती थी कि अभी राठौड़ ने केवल दो नौकर को छोड़कर अपने सभी आदमियों को उसे ही ढूंढने के लिए लगा दिया था। उसने चौकीदार को भी नहीं छोड़ा था, चौकीदार को भी उसे ढूंढने के लिए भेज दिया था। इसलिए दरवाजे का वॉचमैन, गार्ड, माली, हर किसी को केवल एक ही काम दिया गया था और वो था जोया को ढूंढने का काम। जोया मन ही मन सोचने लगी, अगर इतना ही खतरनाक आदमी यहाँ रहता है तो यहाँ एक भी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्यों सबके लिए गेट खुला छोड़ रखा है कि कोई भी आसानी से अंदर आ जाए? ये तो बड़े कमाल की बात है, जोया ने हैरानी से मुंह बिचकाते हुए कहा था। और फिर जोया ने एक नज़र पीछे खड़े हुए जॉन को देखा, जो अभी भी खड़ा खड़ा कांप रहा था। जोया को उसकी हंसी आ रही थी। जोया देखना चाहती थी ऐसा कौन इंसान शैतान बन चुका था जिससे सब लोग इतना डरते हैं। एक तो है वो अबीर राठौड़, न जाने समझता क्या है वो अपने आप को। मुझे तो वो भी किसी शैतान से कम नहीं लगता है। अब न जाने कितने शैतान और होंगे इस देश में अबीर राठौड़ के जैसे। जोया मन ही मन सोचते हुए आगे बढ़ने लगी थी। दरवाज़ा खुला था तो वो उस महल जैसे घर को चारों ओर से देखते हुए आगे बढ़ने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अकरम और रिया की हल्दी का फंक्शन बड़े ही धूमधाम के साथ शुरू हो चुका था। जोया ने बैक टू बैक सरप्राइजेस रखे थे उन दोनों के लिए, जैसे पहले फूलों की बरसात, फिर ढोल नगाड़े और अब पूरे एक घंटे तक बड़ी ही खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस। सब कुछ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। पूरे फंक्शन में इंडियन गानों की धूम मची हुई थी। हर एक बीट पर, ताल पर हर कोई खड़ा हुआ थिरक रहा था। वहीं दूसरी ओर राजवीर सुधाकर जी से मिलने के लिए पहुंच चुका था। सुधाकर राजवीर से खार खाए हुए बैठा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि राजवीर ने रिया को भी अपने गेम का मोहरा बनाया था, तो उसका राजवीर से मिलने का कुछ खास इरादा नहीं था। वो दोनों आज एक कैफे में मिलने वाले थे। जब से राजवीर स्कैंडल में फंसा था, वो तब से अपना फेस कवर करके चलता था। राजवीर एक बड़ा सा फेस मास्क लगाए उस कैफे में समय से पहले ही पहुंच चुका था और वो बड़ी बेसब्री के साथ सुधाकर जी का वेट कर रहा था। वेटर बार बार आकर उससे ऑर्डर के लिए पूछता था, लेकिन राजवीर हर बार उसे मना कर देता। और जब राजवीर को वहां बैठे हुए 40 मिनट से ऊपर हो गए, तो वहां का मैनेजर उसके पास आया और बोला, माफ कीजिए सर, लेकिन आपको आए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है और अभी तक आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। सर, हमारे कैफे के रूल के मुताबिक हम आधे घंटे से ज्यादा किसी कस्टमर को बिना ऑर्डर के यहाँ बैठे रहने की इजाज़त नहीं देते हैं। सॉरी, या तो आपको ऑर्डर करना होगा या फिर यहाँ से जाना होगा। वो मैनेजर राजवीर को कोई सड़क छाप समझ रहा था, जो एसी की हवा खाने के लिए वहां आ बैठा था। और जैसे ही उस मैनेजर ने उसे कुछ ऑर्डर करने या वहां से जाने के लिए बोला, तो आसपास के जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब राजवीर पर हंसने लगे थे।
राजवीर का गुस्सा के मारे बुरा हाल था, लेकिन उसने उस मैनेजर को कुछ नहीं कहा और ना ही उन लोगों को जो उस पर हंस रहे थे। वो तो अपना फ़ोन निकालकर सुधाकर को फ़ोन करने लगा। सुधाकर ने तीसरी रिंग पर फ़ोन उठाया। उसके फ़ोन उठाते ही राजवीर उस पर बरस पड़ा। सुधाकर, मैं तुम्हारा यहाँ इस कैफ़े में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो? उधर से सुधाकर ने कहा, वो सर, मेरी बेटी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं आपसे बाद में मिलूँगा। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सुधाकर की बात सुनकर राजवीर को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी वो मैनेजर फिर बोला, सर, आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं यहाँ से? राजवीर, हाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसकी बात सुनकर मैनेजर वहाँ से जाने लगा, लेकिन राजवीर ने उसे रोका और बोला, सुन, ये ले 5 लाख रुपए। जितने लोग यहाँ खाना खा रहे हैं उनका बिल मेरी ओर से, और जो बाकी पैसे बचे उसको तुम अपनी टिप समझ कर रख लेना। राजवीर ने मैनेजर के हाथ में पैसा थमाया और वहाँ से निकल गया। मैनेजर शॉक्ड होकर कभी एक नज़र पैसों को देख रहा था तो कभी गुस्से से जाते हुए राजवीर को, और बाकी लोग जो वहां बैठे थे उन सब का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो तो सब उसे कोई सड़क छाप समझकर हंस रहे थे, लेकिन वो आदमी तो उल्टा उनके खाने के पैसे देकर जा चुका था। सभी लोग एक दूसरे को नज़रें चुराकर देखने लगे थे। उन लोगों की भीड़ में एक लड़की ऐसी भी थी जिसकी नज़र शुरू से ही राजवीर पर थी, जब से राजवीर उस कैफे में आया था। राजवीर लाया तो वो पैसे सुधाकर के लिए था, लेकिन मैनेजर का अपने लिए रूखा व्यवहार उसे कुछ खास रास नहीं आया था। इसलिए उसने अपनी साथ लाए हुए पैसे उस मैनेजर को थमा दिए थे। वहीं दूसरी ओर अरहम को जैसे ही ये पता चला था कि अरमान अमेरिका जाने वाला है ज़ोया के पीछे, तो उसे एक रास्ता नज़र आ चुका था ज़ोया से मिलने का और उससे माफ़ी मांगने का। अब अरहम काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, वो खुद सचलने लगा था और बोलने भी लगा था, लेकिन ये बात अरमान ठाकुर नहीं पता थी। फिर अगले दिन शाम के समय जब अरमान राजवीर के साथ बैठा हुआ ज़ोया के मिलने के बारे में डिस्कस कर रहा था और जब वो ये कह रहा था कि मेरे पीछे तुम्हें ऑफिस का काम संभालना होगा क्योंकि मुझे अमेरिका जाना होगा, इस बार अपनी कैदी को मैं खुद लेकर आऊँगा, ज़ोया के मिलने की खबर सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी और वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगा था। अरमान उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था और साथ ही उसे अपना किया हुआ प्रॉमिस याद आ गया था। न जाने अपना प्रॉमिस याद आते ही अरमान क्यों कुछ बुझ सा गया था। प्रार्थना चिन्ह, धन्यवाद।